ओम शांति। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसमें सेकंड टॉपिक है सोल रीइंकार्नेशन, ना आत्मा का जैसे बाबा कहते हैं ना इनकार्नेट होते हैं, मतलब अवतार लेते हैं। तो दोबारा जो हमारी आत्मा है इसका हम कह सकते हैं कि पुनर्जन्म कैसे होता है, या होता है या नहीं होता है। तो अलग अलग धर्मों में इसके बारे में अलग अलग बातें बताई हुई है, जैसे हिंदू धर्म हो गया या सिख धर्म हो गया, बुद्धिज्म हो गए, और लोग इसको मानते हैं कि आत्मा जो है जन्म लेती है। लेकिन वही क्रिश्चियन जन्म धर्म हो गया या इस्लामिक हो गए, वो इसको नहीं मानते हैं। तो अलग अलग धर्मों में इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं बताई गई है। जैसे दलाई लामा के बारे में बताते हैं कि वो इस जन्म में क्या है वो तो उनको पता ही है, पिछले जन्म में भी वो क्या थे वो भी उनको पता है, और अगला जन्म उनका कहाँ होने वाला है वो भी उनको पता होता है। तो वो शरीर छोड़ने के पहले ही जो उनके डिसाइपल्स होते हैं उनको बता देते हैं कि मैं इस जगह जन्म लेने वाला हूँ, तो वो उसको वहां से ढूंढ के लेके आते हैं। लेकिन उसकी भी प्रॉपर टेक्निक होती है, ये मैंने पढ़ा हुआ है सच है या नहीं पता नहीं, तो उसकी भी प्रॉपर टेक्निक होती है। और दलाई लामा के बारे में कहते हैं कि वो जिस भी देश में जाते हैं उसी देश की भाषा में वो बात करते हैं, उन्होंने उसकी पढ़ाई नहीं पढ़ी है, लेकिन जिस भी देश में जाते हैं उस देश की भाषा में वो बात करते हैं। तो एक प्रूफ है कि आत्मा जो है पुनर्जन्म लेती है। जैसे अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे अब्राहम लिंकन, उनके लिए भी कहते हैं कि उनका जो लाइफ जो था बहुत सारा इसमें स्टार्टिंग से ही बहुत सारी मुसीबतों से भरा हुआ था, और जब वो प्रेसिडेंट बने उसके बाद में बहुत सारी मुसीबत थी उनके लाइफ में। और जब उनका मर्डर हुआ तो उसके बाद में उन्होंने अमेरिका में ही दूसरे एक व्यक्ति के रूप में जन्म लिया, चार्ल्स लिंडबर्ग के नाम से। और ये जो बताया गया है, जो एक स्वामी योगेंद्रनाथ जो थे भारत के, उन्होंने एक किताब भी लिखी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें किताब में नहीं लेकिन उन्होंने एक जगह स्पीच में ये बात बताई है कि अब्राहम लिंकन जो है बाद में उस चार्ल्स लिंडबर्ग के रूप में जन्म लेते हैं, और जो उन्होंने अमेरिका के लिए जो कुछ भी किया था लेकिन उससे उन्हें उतनी प्राप्ति नहीं हुई जितना उन्होंने किया था उनके लाइफ में जो उनको मिलना चाहिए था। लेकिन जब वो चार्ल्स लिंडबर्ग के रूप में जब उनका जन्म हुआ तो उनको उतना ही नाम मान शान और शोहरत वगैरह सब कुछ मिला अमेरिका में, तो उन्होंने उनके इसमें बताया हुआ था। तो बहुत सारी ऐसे बातें हैं, जैसे मीरा के लिए बताते हैं कि द्वापर में जो है वो कृष्ण की बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड थी जिसका नाम ललिता था। जैसे वो बताते हैं कि कृष्ण को द्वापर में बताते हैं ना भक्ति मार्ग में ललिता, और वो फिर कलयुग में राणा सांगा के घर में मीराबाई के रूप में मतलब उसका जन्म हुआ ऐसे। तो बहुत सारी बातें हैं जो बताते हैं कि फास्ट लाइफ ऐसे होकर गई है ऐसे। जैसे महाभारत में विदुर के लिए बताते हैं कि वो जो था यमराज का अवतार था, उसको श्राप मिला था ऋषि के द्वारा, और फिर ऋषि मांडव के द्वारा उसको श्राप मिला था, और फिर बाद में उसका जन्म विदुर के रूप में हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बाबा भी हमको जैसे बताते हैं कि आत्मा जो है एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है, और बाबा ने यह भी हमें ज्ञान दिया है कि आत्मा जो है केवल मनुष्य जो है मनुष्य ही बनता है, किसी जानवर की योनि में नहीं जाता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमें बताती है कि हमारी आत्मा जो है पुनर्जन्म में आती जाती है। इसके ऊपर जो इसको जो कहते हैं जैसे आत्मा जो है एक एनर्जी है, जैसे बताते हैं क्वांटम साइंस में कि सारा वर्ल्ड जो है एनर्जी से बना हुआ है। तो इसमें दो जो साइंटिस्ट है, एक है अमेरिका का साइंटिस्ट स्टुअर्ट हैमरॉफ, और दूसरा ब्रिटिश साइंटिस्ट है रोजर स्पेंड्रॉफ। इन्होंने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया हुआ है, और उन्होंने बताया कि इस रिसर्च को जैसे बताया क्वांटम साइंस कहते हैं। तो हर एक चीज एनर्जी से बनी हुई है, और इसमें जो है उसके जो एटॉमिक्स नंबर्स होते हैं वो सब एटॉमिक्स नंबर, उसमें अगर कोई चेंज होता है तो उस बात में चेंजेस करने के बाद में उस चीज के बिहेवियर में क्या चेंजेस होता है या उसके नेचर में क्या चेंज होता है उसके बारे में उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा है कि हमारी आत्मा जो है हमारे ब्रेन में जो एक कोशिकाओं का एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, जिसे माइक्रो ट्यूबुलस कहते हैं, वहां पे वो आत्मा रहती है। और जब कोई इंसान शरीर छोड़ता है माना उसका सांस बंद हो जाती है और हार्ट बीट बंद हो जाती है, तो उसके बाद में जो आत्मा जो है एनर्जी जो है वहां से निकल जाती है, माइक्रो ट्यूबुलस से निकल जाती है। लेकिन जैसे बताया कि एनर्जी कई जो मैटर्स है पदार्थ है उनका एनर्जी फॉर्म पूरा ही चेंज हो जाता है, लेकिन कई पदार्थ है जिनका एनर्जी फॉर्म पूरा चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है उसमें। तो आत्मा जो है शरीर छोड़ के निकलने के बाद भी उसमें कुछ जो है मेमोरीज रहती है, इसलिए कई लोगों का जैसे एक्सपीरियंस सुना होगा कि शरीर छोड़ने के बाद में वो लोग वापस आ गए, तो वापस आने के बाद भी फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हम वहां पर गए और आवाज आई कि नहीं अब आपका समय पूरा हो गया, नहीं हुआ है आप वापिस जाओ ऐसे। डॉक्टर हंसा रावल का एक एक्सपीरियंस पढ़ा था काफी समय पहले, पूरा याद नहीं है कि उनके यहाँ पे एक अमेरिका में डॉक्टर है वो, तो उनके पास एक लेडी आई थी और वो प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने एक साथ में 3 बच्चियों को जन्म दिया और उसने शरीर छोड़ दिया। तो जब शरीर छोड़ा तो डॉक्टर हंसा रावल को काफी ये हुआ और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि ये भगवान इतने शरीर छोड़ा, अभी इन 3 बच्चियों का क्या होगा, कौन इनको देखेगा, ऐसे वो काफी प्रार्थना कर रही थी। और 1.5-2 घंटे के बाद में वो वापिस जिंदा हो गई, जो महिला थी वापिस जिंदा हो गई। और जब जिंदा हुई मतलब उसके बाद में काफी इनका साथ में क्लैशिंग होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। तो वो सोचती थी कि ये तो पहले आती थी तो इतनी अच्छी थी, मेरे साथ में इतना अच्छा बिहेवियर करती थी, और अब क्यों इतना झगड़ा जैसे करती और क्यों इतना ये होने लगा। जब उसको पूछा उन्होंने काफी समय के बाद में, उसने बताया कि मैं जब शरीर छोड़ के मैं जा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था, मैं भगवान के पास उस लाइट के पास मैं जा रही थी, और लेकिन आप जो बीच में प्रेयर करके मुझे बुला रहे थे ना, वो प्रेयर मुझे वापस खींच रही थी। और फाइनली ये हुआ कि लाइट का आवाज आया कि अभी आपका समय पूरा नहीं हुआ, आपको वापस जाना है, उन 3 बच्चियों की देखभाल करनी, आपका अकाउंट बाकी है, और मैं इस शरीर में वापस आ गई, तो आपने मुझे इस शरीर में वापस बुला लिया, इसलिए उनका आपस में फिर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होने लगा इस तरह से ऐसे। तो ये एग्जाम्पल्स है, बाहर की दुनिया में भी बहुत सारे देखते हैं। अभी 6-8 महीने या 1 साल पहले न्यूज चैनल में कहीं सुना था, पढ़ा था कि गुजरात में एक बच्चे का जन्म हुआ था, और उसका वो था एमपी का, यूपी का कहीं का था, और उसका मर्डर हुआ था, उसके रिलेटिव्स ने प्रॉपर्टी के लिए उसका मर्डर करके उसकी बॉडी कहीं पे दफना दी थी, और बाद में बॉडी मिली ही नहीं उसकी। तो ये बच्चा जब 3-4 साल का हुआ तो वो बताने लगा कि मेरा नाम ये है और मैं वहां पे रहता हूं ऐसे ऐसे। तो जब उनके घर वालों ने पहले तो टाल दिया उस बात को, लेकिन वो हमेशा ही पीछे पड़ा रहता था, फिर जब सचमुच उस जगह पे गए तो उसने बराबर आइडेंटिफाई किया, और फिर पुलिस को भी लेके गए तो उस जगह को खोदा उन्होंने जहां पे उसकी बॉडी गाड़ी थी, और किसी को भी बात पता नहीं, तो वहां से बॉडी भी मिली उसकी ऐसे। तो बहुत सारे इंसिडेंट है जो बताते हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है ऐसे। तो अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि जो आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो उसमें कौन से सिम्टम्स होते हैं, या कौन से बातें हैं जो बताती है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। तो सबसे पहला जो है इसमें है रिकरिंग ड्रीम्स। रिकरिंग ड्रीम्स में एक ही स्वप्न जो है व्यक्ति को बार बार आता है, डूबा गया वो किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा था कि गणेश जी सोए हुए डॉक्टर बैठा है, बोले कि मुझे ऐसे ड्रोनिंग का सपना आ रहा है कि लोग मुझे डुबा रहे हैं, ऐसे डुबा रहे हैं, इस तरह से सपने आ रहे हैं। तो अभी गणेश फेस्टिवल चल रहे हैं ना, तो रिकरिंग ड्रीम्स जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें है कि आत्मा जो है, जो व्यक्ति जैसे नॉर्मली कहते हैं कि हम जब सोते हैं तो दिन भर में जो भी हमारी एक्टिविटी होती है वही हम सपने के रूप में दिखाई देती है हमें, लेकिन इसमें जो व्यक्ति का जो पुनर्जन्म होता है जो है सोल री इंकारनेशन में, उसमें उसे एक ही प्रकार के स्वप्न बार बार आते रहते हैं। किसी भी टाइप का स्वप्न आएगा, कोई जरूरी नहीं है किसी जगह का स्वप्न आएगा, कोई व्यक्ति का स्वप्न आएगा, किसी भी स्वप्न, वो एक ही स्वप्न बार बार आते रहते हैं हमेशा उसके इसमें जब भी वो सोएगा। तो उससे मालूम पड़ता है कि उसके लाइफ में जो है ये है कि वो आत्मा जो है इसके पहले कहीं दूसरी जगह पे थी और उसकी मेमोरीज अभी तक आत्मा में भरी हुई है, तो वही सपने उसे बार बार आते रहते हैं, हमेशा वही चीजें दिखाई देती जब भी वो सपने में सोएगा वो। तो ये हो गया फर्स्ट रिकरिंग ड्रीम्स। सेकंड जो इसमें होता है कि किसी जगह के लिए व्यक्ति जैसे जन्म लेता है फार फ्रॉम एनी प्लेस। अगर किसी जैसे बताया कि व्यक्ति कोई छोटा बच्चा है, जन्म लिया उसने और 2.5-3 साल 5 साल के बाद में उसके दोबारा उससे उसके जगह की याद आती है कि मैं इस जन्म में, पिछले जन्म में इस जगह पे था मैं, और फिर वो सारी बातें उस जगह की बताता है। वो कभी वहां पर गया नहीं है और उस चीज को भी देखा नहीं, उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो पास्ट लाइफ मेमोरीज जिसे कह सकते हैं कि उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ रही है, मैं इस जन्म में इसी जगह पे था। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हमने जैसे अभी बताया कि एक बीके भाई का बताया था, तो उसमें उसे सारी पिछले जन्म की बातें याद आती हैं। तो वो तो प्रैक्टिकल हमें दिखाई देता है कि ये पिछले जन्म में ये व्यक्ति कहां पे था। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट जो है इसमें स्ट्रांग इंट्यूशन होता है व्यक्ति को, बहुत एकदम स्ट्रांग ये होता है कि मैं इस शरीर में अलग कोई चैतन्य शक्ति हूं, आत्मा का ज्ञान हो या ना हो पता नहीं उसे, लेकिन कोई एक एनर्जी है जो इस शरीर में है और इसके पहले कहीं दूसरी जगह भी थी। तो उसे खुद यहाँ की चीजें अच्छी नहीं लगती है, सब यहाँ से एकदम डिटैच और न्यारा प्यारा रहना पसंद करता है व्यक्ति। स्ट्रांग एकदम इंट्यूशन होता है कि नहीं, इसके पहले मैं कहीं दूसरी जगह पे था और अभी इस जगह पर आया हूं। तो जैसे आत्मा के बारे में कहते हैं कि कई लोग आत्मा को स्पिरिट भी कहते हैं, तो स्पिरिट एक्चुअली कहा जाता है कि स्पिरिट इज ए एनर्जी, तो आत्मा के पांच टाइप बताए जाते हैं। तो सबसे पहले जो आत्मा की फर्स्ट टाइप है उसे जो कहते हैं कि इन्फिनिट सोल, माना नवजात, नवजात शिशु जैसे होता है, वो आत्मा की सबसे पहली स्टेज है। तो उस स्टेज की जो आत्माएं होती है, जैसे हम आदिवासी लोगों को ले सकते हैं कि जो जंगल वगैरह में रहते हैं, उन्हें इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, कोई नियम कायदे नहीं है उनके लाइफ में, बस खाना है, सोना है, उठना है, उतना ही उन्हें पता है, उसके आगे कुछ भी उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। तो वो इन्फेंट टाइप की सोल होती है, नवजात सोल। सेकेंड जो सोल होती है बेबी सोल होती है, वो इन्फेंट के थोड़ा आगे होती है, उनके लाइफ में कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उन्हें अच्छाई बुराई पता होता है, भले उनके लाइफ में कुछ रूढ़िवादिता होती है, कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं जो नहीं होने चाहिए, गलत है, लेकिन उन्हें अच्छाई बुराई का थोड़ा तो पता होता है। तो वो सेकेंड टाइप की सोल होती है जिन्हें बेबी सोल कहते हैं। थर्ड जो सोल होती है यंग सोल जिसे कहते हैं, यंग सोल, जैसे आजकल के हम यंगस्टर का एग्जांपल दे सकते हैं, उन्हें खाली खाना पीना सोना यही पता है, लाइफ में नाम मान शान होना चाहिए, कल क्या होने वाला है उससे उनसे उन्हें कुछ लेना देना नहीं, बस आज लाइफ है, इसी लाइफ को एंजॉय करो, किसी को रिस्पेक्ट रिगार्ड देना है नहीं देना है, उन्हें कुछ लेना देना नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले, उस तरह की जो होते हैं थर्ड टाइप की सोल होती है, यंग सोल जिसे कहते हैं, हिप्पी सोल। चौथे टाइप की जो सोल होती है उन्हें मैच्योर सोल कहते हैं। मैच्योर सोल माना जो थोड़े बहुत आध्यात्मिकता की ओर जिनका रुझान होता है और वो समाज के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ज्ञान होता है कि हम समाज में हैं तो हमें समाज से कुछ हमने लिया है तो समाज को कुछ देना है, इसके लिए कुछ करना है, तो थोड़ा बहुत उन्हें थोड़ा बहुत नहीं काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग होती है, अच्छी नॉलेज होती है, तो वो होता है मैच्योर सोल। और उसके बाद में फिफ्थ टाइप की सोल जो होती है ओल्ड सोल जिसे कहते हैं, कि उनका पूरा ही ध्यान आध्यात्मिकता की ओर होता है, उनका पूरा ही ध्यान जो है कि हम कैसे इस चक्र से मुक्त हो, या हम यहां पर आए हुए तो क्यों आए हुए, हमें इस जन्म में क्यों आए, हमारा एम क्या है इस जन्म में आने का, और फिर हम इसके बाद में जाएंगे तो कहां जाएंगे और हम क्या लेके जाने वाले, जैसे बाबा में ज्ञान देते हैं। तो ये जो फिफ्थ टाइप की सोल होती है ओल्ड सोल कहते हैं। तो पांच टाइप की आत्माएं होती है। तो ये जो होता है कि स्ट्रांग जो इंट्यूशन वाली आत्माएं होती है, ये तो फिफ्थ टाइप की आत्माएं होती है, काफी हद तक फोर्थ टाइप की भी होती है मैच्योर सोल, और फिफ्थ टाइप की भी होती है कि जिन्हें इस बात का ये होता है कि इसके पहले हम कहीं दूसरी जगह पे थे, अभी हम इस शरीर में हैं, लेकिन यहां से हम दोबारा जाएंगे। तो तीसरा जो बताया स्ट्रांग इंट्यूशन होता है। चौथा जो होता है डेजा वू जिसे कहते हैं। डेजा वू जो है फ्रेंच शब्द है, इसका अर्थ है वापस देखा हुआ, या कोई चीज हमने एक बार देखी है और उसी चीज को हम दोबारा देख रहे हैं। तो इसमें ऐसे होता है कि वो व्यक्ति जो है उस सीन को ही बार बार देखता है, या कोई चीज जो होने वाली होती है उसे पहले ही दिखाई देती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो सपने में ही देखे, उसे खुली आंखों से भी दिखाई देता है, और वही चीज उसे बार बार लगता है कि ये चीज जो है मैंने पहले कभी देखी हुई है और ये दोबारा मैं देख रहा हूं, लेकिन कब देख रहा हूं, कब कहां से देखी है कुछ उसका आइडिया नहीं होता है, लेकिन वो व्यक्ति दोबारा उसी चीजों को देखता है। तो जो ये है फोर्थ टाइप का डेजा वो। इसके बाद में जो होता है कि यू आर एन एम्पथ, एम्पथ जैसे एम्पथी होती है समानुभूति, तो इस टाइप की जो आत्माएं होती है इनमें ये एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि वो दूसरे के फीलिंग्स को, भावनाओं को बिना कहे ही समझ सकते हैं। वो अपने आप समझ जाते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, उसे कोई नहीं पूछ रहा है कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन इस व्यक्ति को उसे देखते ही मालूम पड़ जाता है कि उसकी तबीयत खराब है, तो उसको पूछेगा आपकी तबीयत खराब है, तो बोलेंगे आपको कैसे पता, लेकिन उन्हें फीलिंग आती है, अपने आप मालूम पड़ता है, एबिलिटी होती है, कोई इसके लिए वो खास मेहनत नहीं करते, लेकिन अपने आप उन्हें मालूम पड़ता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसकी भावनाएं क्या है, जो भी है। कई बार कई लोगों की बीमारियां जैसे बताए वो भी उन्हें मालूम पड़ जाती है, देखते कि आपको ये बीमारी है ऐसे, वैसा नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप ओल्ड सोल होंगे ना इसलिए मालूम पड़ जाता होगा। तो इस टाइप की जो आत्माएं होती है मालूम पड़ता है। तो इसमें दो बातें, एक इसका एडवांटेज भी है कि अगर वो काउंसलर वगैरह बनते हैं तो लोगों की भावनाओं को, फीलिंग्स को अच्छे से पहचान सकते हैं बिना कुछ कहे ही, जैसे कई लोगों को होती कि ज्यादा बात नहीं करते हैं लेकिन उनके मन में बहुत कुछ भरा होता है। तो ऐसी जो आत्माएं होती है जो फोर्थ टाइप की, तो वो बिना कहे ही सामने वाले का समझ जाती कि इसके मन में कौन सी भावनाएं हैं या क्या कहना चाह रहा है क्या है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो उन्हीं के इसमें निगेटिव थॉट्स में सामने वाले के इसमें खो गए, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके ज्यादा एम्पैथी होने की वजह से, क्योंकि इसमें ये होता है कि व्यक्ति खुद की तरफ उतना ध्यान नहीं देता जितना सामने वाले की तरफ ध्यान देता है। तो अगर आप सामने वाले की निगेटिव भावनाओं में, निगेटिव चीजों में फंस गए तो आपकी लाइफ भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी लाइफ के पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये बताया फिफ्थ टाइप का। सिक्स टाइप का जो है वो है प्रिकॉग्निशन। प्रिकॉग्निशन माना इसमें व्यक्ति को क्या होने वाला है वो पहले ही दिखाई देता है, दूसरी जगह पे कोई चीज हो रही है व्यक्ति नहीं, इसमें इंट्यूशन में रिकॉग्निशन में जैसे बताया कि क्या होने वाला है, व्यक्ति को पहले ही दिखाई देता है कि ये चीजें होने वाली किसी जगह पे, ज्ञान पूर्वानुभव, पूर्वानुभव पहले से उसे इन बातों का अनुभव होने लगता है कि यहाँ पे ऐसे होने वाला है, कहीं पे तूफान आने वाला है, कहीं क्या होने वाला है, तो वो पूर्वानुभव जिसे कहते हैं प्रीकॉग्निशन, वो बातें होती है। और उसमें जो है, मेरे को इसमें तो पांच चीजें होती है बहुत स्ट्रांगली, जो 12 चीजें बता रहा हूँ उसमें से और बचपन से होती है, और इसीलिए मैं ज्ञान में चल रहा हूँ कि ज्ञान में आने के बाद मुझे इसका जवाब मिला, नहीं तो मैं ज्ञान में भी नहीं चलता। और जो उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है रिकॉग्निशन। इसमें जो है व्यक्ति को पिछले जन्म का मालूम पड़ता है, जिससे मैं हिंदी में मैंने अभी इसके पहले क्लास में सुना कि हिप्नोसिस करके व्यक्ति को पिछले जन्म का मालूम पड़ता है, लेकिन इसमें जो होता है व्यक्ति को रिकॉग्निशन में बिना हिप्नोसिस किए ही पिछले जन्म की बातें मालूम पड़ती है। जैसे अपने इसमें भी कई लोग मेडिटेशन में बैठते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है, कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे लाइफ में बचपन से लेकर अब तक क्या हुआ है वो हमें याद नहीं होता है, लेकिन हम ज्ञान में आने के बाद जब मेडिटेशन में बैठते हैं या ध्यान करते हैं तो अपने आप वो चीजें हमारी लाइफ के पास्ट में जो हो चुकी है बिना हिप्नोसिस के ही हमें वो सब चीजें दिखाई देने लगती है। कई बार तो व्यक्ति पिछले जन्म में की बातें भी देख सकता है कि हमारे लाइफ में पिछले जन्म में क्या क्या हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट जो है कि यू लुक ओल्डर देन योर एज रिफ्लेक्ट्स। आपकी जैसे कई व्यक्ति बच्चे होते हैं ना, बचपन से काफी समझदार होते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगेगा नहीं कि ये छोटे बच्चे हैं, उनकी बात करने का ढंग देखो, उनका व्यवहार देखो, चाल चलन देखो, लगेगा कोई बहुत बड़ा कोई समझदार व्यक्ति है ना। कैसे बचपन में कहते हैं कि ये तो नानी है, ये तो दादी है बोलेंगे ऐसे, क्योंकि उनकी बातें इस तरह से होती है। तो व्यक्ति जो है उसकी उम्र से ज्यादा अनुभवी होता है, तो ये जो बात दिखाती कि यू रिफ्लेक्ट मोर देन योर यू लुक्स ओल्डर मोर देन योर एज रिफ्लेक्ट, आपकी उम्र से आप ज्यादा कौटिल्य, हाँ कौटिल्य वो आगे किस में आएगा कौटिल्य तो वो व्यक्ति बहुत समझदार होता है और सयाने होते हैं, तो उनको देख के लगता है कि ये पिछले जन्म में कोई बहुत महान आत्मा होगी या बहुत इस तरह की कोई आत्मा होगी जिसने बहुत सारा नॉलेज लिया होगा और इस जन्म में उस चीजों को अपने लाइफ में हम बिना सिखाए वो चीजें सारी उनके लाइफ में आती जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है एफिनिटी फॉर सर्टन कल्चर और एनवायरमेंट और प्लेस, माना किसी स्थान के लिए या किसी कल्चर के लिए हमारे इसमें बहुत सारा लगाव होता है, मतलब हमारे मन में आत्मीयता होती है उस चीज के लिए, उस कल्चर के लिए। जैसे हम इंडिया में भी देखते हैं ना, बहुत सारे विदेशी हमारे बीके नहीं लेकिन दूसरे विदेशी इंडिया में आके सेटल हो गए और यहाँ पे वो सेवा करते हैं, उन्हें इंडिया का नेचर ही बहुत अच्छा लगता है, तो वो चीजें उन्हें खींचती है। जैसे एक अपनी बीके बहन है फॉरेन की, तो वो हमेशा यहाँ होली के टाइम पे ही आएगी, उसे होली का त्यौहार बहुत पसंद है, वो मार्केट में सब जगह घूम के आएगी, पूरा काला पीला होके आएगी, हमको भी उतना अच्छा नहीं लगेगा लेकिन उसको बहुत अच्छा लगता है, हमेशा होली के टाइम पे आएगी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है होली का फेस्टिवल, इससे बहुत ये हमारे यहाँ पे भी खेलना चाहिए, हमारे देश में भी खेलना चाहिए, इस तरह से। तो एक पुलिंग होती है, मतलब वो जो है एफिनिटी होती है कि वो चीजें उन्हें बहुत अच्छी लगती है, वो प्लेस हो गया, जगह हो गया, वो कल्चर हो गया, उस तरह से उन्हें अच्छा लगता है। और इसमें जो नेक्स्ट जो है कल्चर के बाद में, इसमें व्यक्ति को नेक्स्ट जो पॉइंट है, व्यक्ति को ऐसे लगता है कि फोबिया, जैसे बताया फियर्स होते हैं, अननोन फियर्स या फोबिया होता है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कि उस चीज के साथ में कभी उस व्यक्ति कांटेक्ट में नहीं आया, जैसे किसी को आग से डर लगता है तो उसके लाइफ में किसी कोई इस लाइफ में आग का कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है कि जिससे व्यक्ति को डरना चाहिए, लेकिन व्यक्ति डरता है। मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड था, उसको कुत्ते से बहुत डर लगता था, वो नहीं नहीं सभी नहीं, उसको ज्यादा ही डर लगता था, हाँ कुत्ता खड़ा है माना वो भी एक साइड में खड़ा हो जाएगा और कुत्ता अगर उसको देख रहा है तो वो चलना ही बंद कर देगा, वहां से हिलेगा ही नहीं बिल्कुल, कि बस ये कुत्ता जाए तो उसके बाद में जाऊं, तो अलग अलग डर लगता है लोगों को, जैसे किसी को पानी से डर लगता है तो फोबिया होता है ना। पिछले जन्म में कुछ इंसिडेंट हुआ है उनके साथ में उस चीज को लेके, इस जन्म में नहीं हुआ है, पिछले जन्म में हुआ है, लेकिन वो जो फियर जो है इसी जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है हमारे लाइफ में, तो फोबिया होता है व्यक्ति के इसमें। जानवरों से डर जो होता है नॉर्मल लेग होता है कि वो काट लेगा हमें, जैसे सांप से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है, वैसे भी हमारे सेंटर पे एक बहन है, वो छिपकली हाथ से पकड़ती है, वो कहीं भी छिपकली देखेगी तो बोलेगी नहीं 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 मारो नहीं मारो, वो हाथ से पकड़ती है छिपकली को, तो उसको डर नहीं, बाकी के लोगों को डर लगता है छिपकली से, वो हाथ से पकड़ती है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है 11वां पॉइंट है 11th पॉइंट जो है इसमें कि यू आर नॉट बिलोंग टू दिस अर्थ। इसमें जो आत्माएं होती है वो इस यहाँ पे जन्म तो लेती है लेकिन उन्हें इस संसार की कोई भी चीजें अच्छी नहीं लगती। जैसे बताया ना ओल्ड टाइप की सोल जो है फिफ्थ टाइप की सोल उन्हें एकदम डिटैचमेंट होता है, उन्हें अपने माँ बाप से भी कुछ लेना देना नहीं, अपने रिलेटिव से भी लेना देना नहीं, एकदम जैसे सन्यासी जैसे होते रहेंगे तो लोगों के बीच में ही सोसाइटी में रहते हैं लेकिन उन्हें इससे कुछ ये नहीं होता है, लेना देना नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता है उनका इन चीजों के साथ में। उनमें एकदम न्यारे प्यारे जैसे कोई रेसिंग चल रही है और व्यक्ति जब उस लाइन को क्रॉस करता है तो उस लाइन को क्रॉस करने के बाद में रिलैक्स हो जाता है वो कि बस अभी भागना नहीं अभी पूरा हो गया करके। तो यहाँ पे इसमें भी जो आत्माएं होती है उन्हें लगता है बस हमने बहुत कुछ कर लिया लाइफ में, सब कुछ देख लिया, अब हमें कुछ नहीं देखना है, बस यहां से जाए और फटाफट झंझट पूरा हो यहां से करके। जैसे बाबा कहते हैं ना वान प्रश्न, तो जैसे बाबा कहते हैं कि जो आत्माएं लंबे समय तक मुक्ति धाम में रहती है तो यहाँ पे आने के बाद भी उन्हें मुक्ति अच्छी लगती है, उन्हें शांति अच्छी लगती है, लेकिन इस टाइप के जो आत्माएं हैं वो अपने पुराने अनुभव से ये चाहती है कि फटाफट ये पूरा हो, इस जन्म का भी पूरा हो और हम जाए शांति से कहीं जाके बैठे। वो एकांत में रहना ज्यादा पसंद करते, इंट्रोवर्ट रहना ज्यादा पसंद करती इस तरह की आत्माएं। और 12 जो है नेक्स्ट लास्ट जो है वो जो है स्ट्रांग पैशन होता है किसी में, ओबेशन होता है, किसी पिछले जन्म का ऐसा संस्कार होता है जो इसी जन्म में चल रहा होता है। जैसे कोई बच्चे होते हैं बचपन से उन्हें होता है कि मिलिट्री में ही जाना है, मिलिट्री में जाना है उन्हें, तो लास्ट जन्म में मिलिट्री में ही होते हैं उस तरह से। कोई बच्चे होते हैं कि बचपन से अच्छे डांसर होते हैं, इस जन्म में उन्हें ज्यादा सिखाया नहीं गया लेकिन बहुत अच्छे डांसर होते हैं। जैसे आजकल के छोटे बच्चे होते हैं लेके मोबाइल फोन चलाना शुरू कर देते हैं, तो लास्ट जन्म में भी उसी तरह से कुछ होगा उनके संस्कार। उनके माँ बाप को भी इतना पता नहीं जितना बच्चे फटाफट सीख जाते हैं उस तरह से। किसी में सिंगिंग के संस्कार होते हैं तो बचपन से ही वो जो है गाने का उन्हें ये होता है, उन्हें घर वाले कहेंगे, जैसे किसी को कहता है डॉक्टर ही बनना है, घर वाले बोलेंगे नहीं ये बनो ये बनो, बोलेंगे नहीं मुझे तो डॉक्टर ही बनना है इस तरह से। तो स्ट्रांग कोई हैबिट होती है, ओबेशन होता है, पैशन होता है उनके अंदर। तो ये 12 चीजें हैं। मैं जहां पर हूं टेक्निकल साइड में, मेरे घर वालों का था कि इसको सीए बनाओ, बहन बोलती थी सीए बनाओ, भाई बोलते थे डीएड बीएड करो, लेकिन मुझे टेक्निकल साइड में इंटरेस्ट था इसलिए मैं टेक्निकल साइड में है, मुझे ये करना था। वो जो मार्क्स, हाँ वो मार्क्स के लिए भी बताते हैं कि वो पिछले जन्म में अगर कोई इंसिडेंट वगैरह हुआ है बहुत स्ट्रांग कोई चीज है तो इस जन्म में, मेरे इसमें भी था हाथ में अभी तो चले गया तो पिछले जन्म में कोई इंसिडेंट वगैरह हुआ है बर्थ मार्क्स होते हैं तो वही पिछले जन्म का कुछ हुआ है इस जन्म में, वो जो है आत्मा जो है संस्कार उस हिसाब से लेके आती है वो, या इस जन्म में भी वो चीजें उनके इसमें दिखाई पड़ते हैं ऐसे। तो इसके हुआ है दुख के साथ में। कई लोगों को केवल मार्क्स होते हैं, कई लोगों को जैसे पता पेन भी होता है, दर्द भी होता है उस तरह से, तो वो ज्यादा अगर किसी को स्ट्रांग फीलिंग है तो पेन के साथ में इसमें होते हैं। गोली थी गाँव तो इसमें कई इसमें बताते हैं कि आत्मा जो होती है इसमें, बाहर के लोग जैसे बताते हैं कि किसी का कुछ अकाउंट बच गया होता है तो अकाउंट दोबारा सेटल करने के लिए इस शरीर में जो दूसरे शरीर में वापस आते हैं। तो इसमें कहते हैं कि जो अच्छी आत्माएं होती हैं, साधु संतों की जो आत्माएं होती है वो ही वापिस से ऐसे इसमें आती है अपना पुराना अकाउंट उन लोगों के साथ में क्लियर करने के लिए। तो इसमें बताया जाता है कि अगर किसी को इससे बाहर निकलना है समझो तो क्या करते हैं, मतलब पता नहीं सच है या झूठ है, तो उसको बताते हैं कि जो कुम्हार का जो चक्का होता है उसके ऊपर उस व्यक्ति को बिठा के वो चक्के को जो एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो उसकी जो है पास्ट लाइफ की जो है मेमोरीज, जो है सारी मेमोरीज चली जाती है और वो नॉर्मल हो जाता है व्यक्ति। हाँ वो पता नहीं, वो करके देखना पड़ेगा लेकिन पढ़ा है कहीं पर इस तरह से बताए गोली का नहीं पता नहीं, कुछ ना कुछ मार्क्स होते होंगे जो भी, अलग अलग इसमें अलग अलग लोगों के सिम्टम्स होते हैं। तो ये हमने कुछ पॉइंट देखे जो है सोल री इनकार्नेशन के, 12 पॉइंट हमने इसमें देखे। ओम शांति। पहला जो पॉइंट जो था क्या था, ड्रीम, रिकरिंग ड्रीम्स, जो रिकरिंग ड्रीम्स से। है सेकेंड पॉइंट जो है फार प्लेस मेमरी, फार फ्रॉम एनी प्लेस या फार प्लेस मेमरीज जो होती है। हाँ किसी पिछले जन्म में जैसे बताया कोई अगर संस्कार है, कोई बहुत लिखता है और अच्छी हैंडराइटिंग है तो इस जन्म में भी उसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है काफी। आईटी से निखिलेश भाई संस्कार लेके आते हैं ना। तो डॉक्टरों की तो बहुत खराब होती है हैंडराइटिंग, मेरी बहुत खराब है। तो सेकंड ये था, थर्ड वाला जो था स्ट्रांग इंट्यूशन होता है व्यक्ति को, फोर्थ वाला जो इसमें डेजा वो होता है फ्रेंच शब्द जो है, और फिफ्थ जो है यू आर एन एम्पथ, सिक्स्थ जो है प्रिकॉग्निशन होता है, नेक्स्ट जो है रिकॉग्निशन होता है, और सेवेंथ जो है किसी एफिनिटी, किसी खास इससे कल्चर से हमारा खास लगाव होता है, और नेक्स्ट जो है यू लुक ओल्डर, नहीं ओल्डर देन योर एज रिफ्लेक्ट्स, ओल्डर देन योर एज रिफ्लेक्ट्स, और इसमें नेक्स्ट जो है फिर फोबिया होता है व्यक्ति को, किसी इससे डर होता है, और नेक्स्ट जो है इसमें स्ट्रांग पैशन होता है, और लास्ट वाला था स्ट्रांग पैशन, और लास्ट जो है यू आर नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। तो ये 12 बातें लाइफ में होती है, हर एक अपने आप लाइफ को चेक कर सकता है कि हमारी लाइफ में सारी इनमें से कौन सी बातें हैं या कौन सी बातें नहीं है, है तो अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओम शांति।